personality of Godhead, will I again be able to be a servant of your eternal servants?
तात्पर्य इस श्लोक में भक्तिमय जीवन का सार दिया गया है। पहले मनुष्य को भगवान के दास का दास बनना पड़ता है, दासान दास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया और अपना उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के पालक श्री कृष्ण के दास बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। गोपी भक्तु पद कमलयो दास दासान दास। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु परंपरा से संबद्ध हो और भगवान के दास का भी दास हो। उसी के निर्देश में मैं अपने तीनों संपत्तियां अर्थात मन वाणी तथा शरीर को लगाए। गुरु के आदेशानुसार शरीर को शारीरिक कार्यों में लगाए, मन कृष्ण के विषय में निरंतर सोचे और अपनी वाणी को भगवान के यश के प्रचार में लगाए। यदि मनुष्य इस प्रकार से भगवान की प्रेमा भक्ति करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। ओम ज्ञान त्रिविरांजस्य ज्ञानांजन शरावया चक्षुर्मीलितं येन राधाकान्तं नमस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधेश्वरी वृषभांसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग वृत्रासुर की कथा को कर रहे हैं इन अध्यायों में भागवत के छठे स्कंद के जो प्रारंभ हुई करीब सातवें अध्याय से, जैसे इंद्र ने अपमान किया और फिर आगे आगे क्या हुआ। अभी चर्चा इन दो अध्यायों में 11 और 12 अध्याय में है कि किस प्रकार वृत्रासुर अपने दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं और कैसे भगवान के धाम वापस जाते हैं। तो इस चर्चा के पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे ताकि वृत्रासुर के दिव्य गुणों को कहते हुए, उसकी दिव्य मृत्यु को कहते हुए आचार्यों की शक्ति हमें प्राप्त हो।
सर्वशास्त्राभिपीयूषः सर्वलयवेकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकतृप्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगे मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाइन अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कंठयो सुरा। युद्ध चल रहा है, वज्र है, इंद्र के पास देवताओं की शक्ति को देखकर असुर भागने लगे, दानव भागने लगे। और जब वे भाग रहे थे, वृत्रासुर ने प्रयास किया उनको कहने का कि पीठ मत दिखाओ, वापस आओ, युद्ध करो, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। वो इतने घबरा गए थे इंद्र की शक्ति को देखकर, इंद्र के बल को, तेज को देखकर, कि वे वृत्रासुर की बात को सुन नहीं पाए। और फिर वे जो देवता थे वे लोग पीछे पीछे भागते हुए उनको मारने लगे। भागते हुए सैनिकों को वैसे मारा नहीं जाता, लेकिन देवताओं ने जो युद्ध छोड़कर भाग रहे थे उनके पीछे भागकर उनको मारना शुरू किया और बड़ी बुरी तरह से उनको क्षति पहुंचाई। और जब ये देखा वृत्रासुर ने, तो उसने दोनों को, देवताओं को भी और असुरों को भी डांटा, दोनों की निंदा की, क्योंकि दोनों ही निंदनीय कार्य कर रहे थे। एक भाग रहा था युद्ध छोड़कर, जो निंदनीय कार्य है, और दूसरा भागते हुए असहाय शत्रु पर, जो घबरा चुका है अपनी मृत्यु से, घबरा रहा है, भाग रहा है, उसको मार रहे हैं, वो दूसरा निंदनीय कार्य। तो इसलिए वृत्रासुर देवताओं से कहते हैं कि अरे ये जो असुर हैं, ये सब इन्होंने मां से जन्म लिया है, लेकिन केवल ये मल के रूप में निकले हैं मां के गर्भ से बाहर, और आप लोग कौन सा बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप ऐसे जो भय से भागते हुए सैनिक हैं, योद्धा हैं, उनको आप मार रहे हो, ये धर्म नहीं है, जिससे आपको कोई अच्छी गति प्राप्त नहीं होगी, ऊंचे लोग प्राप्त नहीं होंगे। प्रभुपाद तात्पर्य में पुत्र के विषय में कहते हैं कि सच्चा पुत्र कौन है, तो वो कहते हैं कि यहां जैसे तुलना की गई है कि ये जो असुर हैं ये केवल मां के गर्भ से मल की तरह बाहर आए हैं, ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी तुलना की गई है कि कैसे अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल नहीं करता तो वो नाम मात्र का पुत्र है, मल और मूत्र के समान है, जो शरीर से बाहर निकलता है ऐसे ही मां के शरीर से बाहर निकला हुआ वो पुत्र है। चाणक्य पंडित भी इसको कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर विद्वान पुत्र नहीं है, भक्त पुत्र नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, तो फिर वो केवल एक अंधी आंख की तरह है। चाणक्य पंडित कहते हैं जैसे आंख होती है लेकिन देख नहीं पाते, अंधा व्यक्ति की जो आंखें होती हैं वो केवल दर्द देती हैं, देख नहीं पाती। आंखों का उद्देश्य है देखना, लेकिन अगर आंखें देख नहीं पाए, केवल दर्द दें, तो ऐसी आंखों का क्या लाभ है। चाणक्य पंडित कहते हैं ऐसा पुत्र जो विद्वान नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो तो केवल एक अंधी आंख की तरह है। तो इसी तरह वृत्रासुर भी कहते हैं कि मल की तरह निकले हुए हैं, क्यों, क्योंकि भाग रहे हैं अपने कर्तव्य से। प्रभुपाद कहते हैं सच्चा पुत्र वो है जो भगवान का भक्त बनता है, भगवान की भक्ति करता है, वो सही दृष्टि में अपने माता पिता के कर्तव्य को पूरा कर रहा है, अपने माता पिता के ऋण को चुका रहा है। हम लोग जब इस जगत में जन्म लेते हैं तो कई प्रकार के ऋणों के साथ आते हैं, पैदा होते ही ऋण हो जाते हैं हमारे, भूतात ऋणाम पितृणाम, देव ऋषि भूतात ऋणाम पितृणाम, इन सब के हमारे ऋण हैं, देवताओं के हैं, ऋषि मुनियों के हैं, साधारण जीवों के हैं, माता पिता के हैं, देवताओं के हैं, बहुत सारे लोगों के ऋण हैं हमारे ऊपर। लेकिन जो भक्ति करता है, ना किं करो नायम ऋणी चराजन, वो व्यक्ति कभी किसी का ऋणी नहीं रह जाता। तो सच्ची दृष्टि में अगर माता पिता का ऋण एक पुत्र को चुकाना है तो उसको भक्त बनना चाहिए, अन्य कोई मार्ग नहीं है। माता पिता का ऋण क्या चुका सकता है पुत्र, क्या दे सकता है? क्या माता पिता को थोड़ा सा धन कमा के दे सकता है? क्या वो माता पिता के कष्टों का ऋण है? एक मां कितना कष्ट लेती है बालक को जन्म देने में, फिर जन्म के बाद उसको संभालने में, उसको बड़ा करने में। क्या उसका ऋण धन से चुकाया जा सकता है? क्या कोई कह सकता है कि कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा बहुत जॉब कर ली, काम कर लिया, थोड़े पैसे दे दिए अपने माता पिता को, मेरा ऋण चुक गया? नहीं चुकाया जा सकता। पैसे से हम केवल आया खरीद सकते हैं, मां नहीं। आया जो आकर थोड़ा बहुत ध्यान देती है बच्चे का, लेकिन मां को नहीं खरीदा जा सकता। तो इसीलिए अगर सही दृष्टि में ऋण चुकाना है तो भक्त बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति से, भक्ति करके उसके फल को अपने माता पिता को देकर हम सच्ची दृष्टि में ऋण चुका रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हमें ये जीवन प्रदान किया, ये शरीर प्रदान किया, इस शरीर में ऐसे गुण प्रदान किए जिसके द्वारा हम भगवान की ओर आ सके। और इस ऋण को चुकाने के लिए अगर हम तीव्रता से भक्ति करें, इसलिए जान लीजिए कि माता पिता का ऋण केवल उनके पास रहकर नहीं चुकाया जाता। माता पिता का ऋण उनको धन देकर नहीं चुकाया जाता। माता पिता का ऋण उनको उनके बुढ़ापे में सुविधा देकर नहीं चुकाया जाता। माता पिता का ऋण भक्ति करके चुकाया जाता है। और ऐसा पुत्र जो भगवान का भक्त बने, वो ना तो शरीर से निकले हुए मल मूत्र के समान है और ना ही अंधी आंख के समान है। वो सच्ची दृष्टि में पुत्र है, क्योंकि वो अपने माता पिता को तार देता है, उद्धार कर देता है उनका। इसीलिए अगर किसी को माता पिता से बड़ा प्रेम है तो उसको भक्त बनना चाहिए। भक्ति इतनी तीव्रता से करनी चाहिए कि माता पिता का सारा ऋण चुक जाए, वे मुक्त हो जाए, जैसे ध्रुव महाराज ने किया। ध्रुव महाराज ने भक्ति की, और जिस समय ध्रुव महाराज जा रहे थे भगवान के धाम, विमान आया लेने के लिए, और जब ध्रुव महाराज ने मना कर दिया कि नहीं, पहले मेरी माता को लेके जाना होगा, मेरी माता कहाँ है, उनको भी साथ में ले जाना है, तो उनको दिखाया कि देखिए आपकी माता तो पहले ही जा रही है। अर्थात अगर कोई बड़ी तीव्रता से भक्ति करता है तो उसके भगवत धाम जाने से पहले उसके माता पिता पहुंच जाते हैं भगवत धाम। ये सच्चा ऋण चुकाना है, और कोई ऋण हम चुका नहीं सकते माता पिता का। तो इसीलिए सच्चा पुत्र वो है जो भक्ति करता है। तो वृत्रासुर कह रहे, ये सब तो मल के समान है, शरीर से जैसे मल निकलता है व्यर्थ। मल की क्यों तुलना की गई? क्योंकि शरीर से जो मल निकलता है वो व्यर्थ है व्यक्ति के लिए। ऐसे ही अगर माता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो भक्त नहीं है तो व्यर्थ है। और इसीलिए भक्ति, जैसे प्रहलाद महाराज को भी नरसिंह देव ने बताया कि जहां भक्त होता है, जन्म लेता है, उसकी तो कई पीढ़ियां तर जाती हैं। तो इस दृष्टि से हमें ये जानना चाहिए कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, और एक पुत्र के लिए, एक संतान के लिए भक्ति करना ही ये जीवन के सारे ऋणों को, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, अन्य जीवों का ऋण, माता पिता का ऋण, पितरों का ऋण, सबका ऋण चुका सकता है अगर वो भक्ति करता है। बस। तो ऐसे वृत्रासुर ने कहा, और फिर देवताओं से कहा कि अगर आपके अंदर श्रद्धा है अपनी शक्ति में, आप अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहे हो, तो आपके अंदर अगर ये श्रद्धा है कि आपको बहुत शक्ति है, आपके अंदर धैर्य है, और आप भगवान में विश्वास करते हो, आपके अंदर अगर श्रद्धा है अपने अपने बल में, आपके अंदर अगर धैर्य है, और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा नहीं रखते, तो मेरे सामने आकर युद्ध करो। अर्थात वृत्रासुर कह रहा था कि मेरे से वो व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता जिसको अपने पर श्रद्धा नहीं है, जिसको धैर्य नहीं है, और जिसको इंद्रिय तृप्ति में बहुत ज्यादा रुचि है। जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमने सोचा कि जैसे वृत्रासुर ने ये कहा, इसी को अगर हम भक्ति की दृष्टि से देखें तो ये भक्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है माया से युद्ध करने के लिए। मान लीजिए वृत्रासुर माया है, ये भगवान की शक्ति है जिससे हमें युद्ध करना है, तो उससे युद्ध करने के लिए, उसके सामने खड़े रहने के लिए क्या चाहिए? वृत्रासुर कहते श्रद्धा। पहली चीज श्रद्धा चाहिए। किसमें श्रद्धा? यहां वो देवताओं को कहते अपने कार्य में, अपने बड़े महान होने में तुम्हें विश्वास है, तो जीव को श्रद्धा होनी चाहिए अपने संबंध से, भगवान से जो संबंध है उसमें, कि मुझे पूर्ण श्रद्धा है, भगवान सर्वशक्तिमान है और मेरा उनसे संबंध है, इसीलिए मेरे अंदर वो गुण है, वो शक्ति है जिससे मैं इस जगत को पार कर सकता हूं। अहम तरिष्यामि दुरांत पारम, भागवत के 11वें स्कंद में श्लोक आता है जो साधारणतः संन्यास के समय कहा जाता, बोला जाता। तो ये श्रद्धा, ये विश्वास होनी चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो अगर किसी को ये विश्वास है, और दूसरी चीज धैर्य, भक्ति में धैर्य चाहिए। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी तक 4 हाथ नहीं हुए मेरे, विमान नहीं आया, कोई श्रद्धा कुछ नहीं हो सकता, कोई धैर्य रखना चाहिए, कोई बात नहीं, इस जीवन में होगा, भगवान करेंगे, तो धैर्य। और तीसरी चीज, बहुत ज्यादा कामना इंद्रिय तृप्ति की नहीं है, एम्बिशियस बहुत, कि बस कैसे मैं इस जगत को वश में कर लूं। प्रभुपाद एक जगह पर गए एक इंटरव्यू के लिए, उस व्यक्ति से वो पूछ रहे थे प्रभुपाद कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो व्यक्ति अपनी टेबल खोलता है और बहुत सारे विजिटिंग कार्ड निकालता है, उस कंपनी के सब कार्ड्स रखता है और उनमें से अपना एक कार्ड निकाल के सबसे ऊपर रखता है, कहता है ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, मतलब सबसे ऊंचा बनना। तो जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा कामनाएं आकांक्षाएं हैं भौतिक भोग की, वो फिर माया के सामने टिक नहीं सकता। तो इसीलिए अगर माया के सामने टिकना है, भगवान में श्रद्धा हो, धैर्य बनाए रखें कि एक दिन कृपा आएगी भगवान की, और जितना हो सके इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं से दूर रहें, निश्चित माया से युद्ध जीतेंगे। तो वृत्रासुर ने यह कहा कि अगर आपके अंदर ये है तो मुझसे युद्ध कीजिए, मेरे सामने आइए। और फिर वृत्रासुर युद्ध करने लगा, तो बहुत तीव्रता से उसने युद्ध किया, बड़े उसका आकार तो बहुत बड़ा था, तो देवताओं को अपने पांव के तले रौंदने लगा और सारे देवता हैरान हो गए उस समय, और अकेला वो मारने लगा। फिर उस समय इंद्र ने आक्रमण किया, इंद्र ने एक ऐसे गदा फेंकी उसकी ओर, और उसने आराम से उस गदा को पकड़ लिया और उसी गदा से बड़ी जोर से ऐरावत के सर पर वार किया, और ऐरावत का मुंह से खून निकलने लगा और ऐरावत पीछे जाकर गिर गया इंद्र के साथ। और जैसे बाकी सब देवताओं ने देखा, वो हाय हाय करने लगे, अरे क्या हुआ ये। और फिर वो ऐरावत गिर पड़ा, खून निकलने लगा। खैर इंद्र ने अपने हाथ से स्पर्श करके, ऐसा कहा जाता है कि इंद्र के हाथ से अमृत आता है, तो इंद्र ने अपने हाथ से स्पर्श करके उसको पुनः स्वस्थ कर दिया, और फिर वो खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। तो ऐसे बड़ा तीव्रता से वो युद्ध करने लगा, और फिर उस समय थोड़ा सा क्रोध वृत्रासुर ने प्रकट किया। वृत्रासुर ने कहा इंद्र को देखकर कि तुमने एक बड़ा घृणित कार्य किया है, तुमने पहले एक व्यक्ति को, एक ब्राह्मण को अपना गुरु बनाया, उनसे सब कुछ सीखा और फिर उन्हीं का वध कर दिया, अपने ही गुरु का तुमने वध कर दिया, तुम्हारी तुमसे आज मैं बदला लूंगा अपने भाई की मृत्यु का, के भाई थे वृत्रासुर के भाई विश्वरूप जिनको मारा था, तो अपने भाई की मृत्यु का बदला आज लूंगा आपसे और उस ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो मैं आज आपको मारूंगा, और मरने के बाद ने इतना घृणित कार्य किया है कि आपको अग्नि भी नसीब नहीं होगी, आपके शरीर को केवल गिद्ध और कौवे खाएंगे, अग्नि नहीं मिलेगी आपको। वृत्रासुर कहते हैं इंद्र को। तो ऐसे जब वो इंद्र को बोल रहे थे, ऐसे बातें कर रहे थे, तो उस समय इंद्र खड़े थे, उनके हाथ में वज्र था, लेकिन उन्होंने वज्र नहीं चलाया था, क्योंकि इंद्र सोच रहे थे कि अभी मैंने इतना तेज फेंका था गदा और वो विफल हो गई, अब अगर मैं ये वज्र को फेंकूंगा और ये भी विफल हो गया तो क्या होगा। इसलिए इंद्र वज्र चला नहीं रहे थे, हाथ में लेके खड़े थे, सोच रहे थे क्या करूं। बहुत सुंदर बात यहां पर आती है कि वृत्रासुर उनको उस पर विश्वास दिलाता है। वृत्रासुर कहता है, अरे तुम्हारे हाथ में वज्र है, मारो उससे मुझे, शंका मत करो, ये भगवान के द्वारा दिया गया है, इसमें बड़ी शक्ति है, ये विफल नहीं होगा। प्रभुपाद लिखते हैं कि देखिए इंद्र जिसको भगवान ने वज्र दिया उसको शंका थी कि ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन वृत्रासुर को पूरा विश्वास था भगवान ने दिया है तो काम करेगा, ये भक्त है। प्रभुपाद कहते इसलिए वृत्रासुर महान भक्त है कि उनको पता था कि ये वज्र इसलिए काम करेगा क्योंकि भगवान की योजना से बना है। तो उन्होंने कहा ददीची की हड्डियों से बना है, भगवान के आदेशानुसार बना है, चलाओ इसे, इसको चलाओगे तो फिर निश्चित मैं मारा जाऊंगा, शंका मत करो। इंद्र शंका कर रहे थे और उस समय फिर वो इंद्र से कहते हैं कि इस बारे में तुम्हें कोई शंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि भगवान की शक्ति है, इसको चला दो। और फिर वो सोचने लगे कि जब ये चलाएगा इंद्र तो स्वाभाविक है कि मेरी मृत्यु होगी, और जब मेरी मृत्यु हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। उस समय भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे और बहुत सुंदर उन्होंने प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण की, और उन्होंने कहा जैसे इस प्रार्थना में हम लोग देख रहे हैं, ये वृत्रासुर की प्रार्थनाएं हैं। तो वो कहते हैं कि किस तरह से हे भगवान, जो मांग रहे हैं कि अब मैं मृत्यु आएगी तो मुझे क्या प्राप्त होगा। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपके दासों का दास बनूंगा मैं। तो वो कर रहे हैं भगवान से कि कब मैं आपके चरणों को देख सकूंगा, कब मैं आपकी भक्ति कर सकूंगा, और वो बता रहे हैं कि मुझे बड़ी उत्कंठा है। उदाहरण देते हैं तीन उदाहरण कि कैसी उत्कंठा है मेरे हृदय में। एक पक्षी का उदाहरण देते हैं, दूसरा एक गाय के बछड़े का, और तीसरा एक पत्नी का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे पक्षियों के बच्चे होते हैं, वो घोंसले में होते बाहर नहीं जा पाते और बस वो इंतजार करते, उनके मन में और कुछ नहीं होता, इंतजार करते हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे, कब पक्षी आएंगे हमें खिलाएंगे, बस यही उनका इंतजार है। दूसरा उदाहरण देते हैं बछड़े का, जब उसको बांध दिया जाता है तो बछड़े के मन में एक ही चीज होती है, कब मैं खुलू जाकर माँ का दूध पीऊं, बस, और कोई भाव नहीं होता। आप देखिए जब उसका दूध पीने का समय हो जाता है, बछड़ा बंधा होता है, इधर उधर भागता है, इधर करता है, कुछ करता है, बस उसे खोल दीजिए, और जैसे ही खोलते हैं सीधा हजारों गायों में अपनी माँ के पास जाता है। तो इसी तरह उदाहरण देते हैं कि जैसे बछड़ा, उसके अंदर तीव्रता, उसके अंदर केवल उत्कंठा, बड़ी तीव्र उत्कंठा होती है माँ का दूध पीने के लिए। और तीसरा उदाहरण देते हैं कि एक ऐसी पत्नी का, सती पत्नी का, जिसका पति कहीं बाहर गया हुआ, वो कैसे इंतजार करती है उसके आने का। तो ऐसे उदाहरण देकर वृत्रासुर कहते इतनी उत्कंठा मेरे हृदय में है आपके चरण कमलों को पाने की, इसीलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि किस तरह मैं इस जगत को त्याग कर, वो कहते हैं कि इस जगत में मेरी अभी भी आसक्ति बनी हुई है, मुझे अपनी पत्नी अपने बच्चों से बड़ी आसक्ति है, लेकिन हे भगवान अब आपसे प्रार्थना है कि इस आसक्ति को काट दीजिए ताकि मैं आपके चरण कमलों को प्राप्त कर सकूं। तो ऐसे कहकर जब उन्होंने प्रार्थनाएं कर ली तो फिर से उन्होंने इंद्र पर आक्रमण किया, अपना जो उनके पास त्रिशूल था उसको फेंक दिया इंद्र के ऊपर, आक्रमण शुरू कर दिया। तो इस समय इंद्र ने काट दिया उनके त्रिशूल को और साथ साथ उनकी एक बाजू भी काट दी उन्हें। तो उनके एक हाथ को काट दिया, अब एक हाथ कट गया, उनका त्रिशूल कट गया, फिर भी वो युद्ध कर रहे हैं। और ऐसे में वो बड़े बड़े क्रोध में आ गए जब उनका उन्होंने हाथ काट दिया, तो उस समय उन्होंने आक्रमण किया इंद्र पर बड़ी जोर से, और इंद्र गिर पड़े ऐरावत से नीचे, उनके हाथ से वज्र भी गिर पड़ा। तो अब इंद्र जब उठकर खड़े हुए तो इंद्र को बड़ी ग्लानि हो रही थी, शर्म आ रही थी कि अरे वज्र भी गिर गया, मैं तो मानो हार गया हूं, अब कैसे उठाऊं। तो उस समय वृद्रासुर उनको कहते हैं उठाओ उसको, चिंता मत करो, उठाओ वज्र। अरे इतने दुखी क्यों हो रहे हो, देखो मुझे। वृत्रासुर कहते हैं हाथ कट गया मेरा, फिर भी मैं युद्ध कर रहा हूं ना, तो जब मैं युद्ध कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, अभी तो तुम्हारा हाथ नहीं कटा, सब कुछ है, उठाओ वज्र को और ये विजय और पराजय की बात मत सोचो। तब इस समय युद्ध भूमि में हाथ कटा हुआ है, तकलीफ में है, लेकिन वृत्रासुर ज्ञान देते हैं इंद्र को। प्रभुपाद लिखते हैं कि इस समय वो इंद्र के गुरु के समान है, ज्ञान दे रहे हैं। तो इंद्र को कहते हैं कि जय और पराजय ये तो भगवान के हाथ में है, हम सब भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि सदैव किसी की विजय होती है, वो तो केवल भगवान की होती है, अन्यथा व्यक्ति कभी पराजय को अनुभव करता है कभी विजय का। इसलिए चिंता नहीं करो, युद्ध करो, दुखी मत हो, उठाओ वज्र को और युद्ध करो, और ये जान लो कि सब कुछ नियंत्रण भगवान का है। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं वो, काठ की गुड़िया या जिसको कठपुतली कहते हैं, या फिर एक घास से बना हुआ जानवर, वो कहते हैं कि ये अपने आप, इनकी कोई शक्ति नहीं है। जैसे कठपुतली होती है, उसको कोई हिलाता है, कोई उसको खिलाता है, तब वो घूमती है, ऐसे हम सब बंदे हैं भगवान से, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मारो, उठाओ वज्र और मारो मुझे। और वो कहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि ये तुम कर रहे हो, हम सब भगवान के अधीन हैं, कुछ भी भगवान के बिना नहीं होता, इसीलिए अब आप उठाओ इसको और युद्ध करो, और ये जान लो कि ये जो हम लोग खेल रहे हैं ये एक जुए के समान है, क्योंकि कोई भी जीत सकता है। तो जुए में जैसे वो पासे फेंके जाते हैं, ऐसे हमारे जो तीर हैं ये पासों के समान हैं, और हमारे जो ये घोड़े इत्यादि हैं ये चेस, ये बोर्ड है जिस पर खेला जाता है, और हमारा जीवन दांव पर लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, उठाओ और युद्ध करो। तो ऐसे जब उन्होंने कहा और ये समझाया कि हम सब तीन गुणों के अधीन हैं, भगवान केवल स्वामी हैं, तो इंद्र ने जब ये सब सुना तो इंद्र गुणगान करने लगे वृत्रासुर का, वहीं युद्ध भूमि में। इंद्र ने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि एक ऐसे परिवार में जन्म लेकर, दैत्य दानव परिवार में जन्म लेकर तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति है। क्योंकि इंद्र को आश्चर्य हो रहा था, प्रहलाद महाराज ने भी दानव कुल में जन्म लिया लेकिन उनके अंदर भक्ति थी, उसका कारण था नारद मुनि की कृपा, लेकिन ये वृत्रासुर को कौन से मुनि मिले, कोई नहीं। तो इसलिए आश्चर्य हो रहा था इंद्र को कि इसका तो जन्म हुआ, इतना बड़ा असुर हो गया, कहां हमने कभी सुना नहीं कि किसी ने इसके ऊपर कृपा की हो, ये कैसे भक्त हो गया। तो इसलिए वो कहते बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने जो कहा है वो सब सही है, और ये आपकी भक्ति के गुणों को प्रदर्शित कर रहा है, आप एक महान पूर्ण भक्त हैं भगवान के, इंद्र कहता। अब देखिए जब इंद्र ने कह दिया, मान लिया कि भगवान के भक्त हैं, तो क्या इंद्र को युद्ध करना चाहिए था, स्वीकार कर लिया कि आप महान भक्त हैं, लेकिन इंद्र ने फिर युद्ध किया, किस लिए, कर्तव्य को करने के लिए। यहां वृत्रासुर भी जानता था कि इंद्र भगवान का भक्त है, तभी तो भगवान ने मदद की है, लेकिन और इंद्र भी जान गया कि ये महान भक्त है, लेकिन अपने कर्तव्य को करते हुए दोनों ने युद्ध प्रारंभ किया। इंद्र ने और एक हाथ वृत्रासुर का काट दिया, अब वृत्रासुर के दोनों हाथ कट गए, वृत्रासुर ने अपने मुंह को बहुत बड़ा कर लिया और एकदम विशाल मुंह कर लिया, और इंद्र ऐरावत दोनों को निगल गया, दोनों अंदर चले गए, और सारे देवता हाय हाय कर रहे, ये क्या हो गया, हमारा इंद्र मारा गया, क्योंकि इंद्र अंदर चले गए, खत्म, और मुंह बंद कर लिया उन्होंने, खा गया। लेकिन क्योंकि इंद्र को नारायण कवच की शक्ति थी, सुरक्षा प्रदान थी, साथ साथ इंद्र के अंदर भी योग शक्तियां हैं, तो इसलिए इंद्र मरे नहीं और फिर उसके पेट को फाड़ कर बाहर आ गए वृत्रासुर के उस वज्र से। और फिर उन्होंने वो वज्र चलाया, ऐसे लिखा है कि वो वज्र गले को काटने लगा वृत्रासुर के, लेकिन उसको काटने को एक वर्ष का समय लगा। बड़ी तेजी से वो घूम रहा था, काट रहा था, लेकिन एक वर्ष का समय लगा और उसके बाद वृत्रासुर की मृत्यु हुई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं इसका। वो कहते हैं कि इंद्र ने वृत्रासुर को नहीं मारा, वृत्रासुर ने इंद्र को मारा। कैसे? वो कहते हैं कि जब वृत्रासुर को वो निगल गया तो उस समय, क्षमा चाहते हैं, इंद्र को जब वृत्रासुर निगल गया तो उस समय वृत्रासुर ने सोचा कि अब इंद्र मर गया, खत्म, मैं निगल गया, तो उसी समय उन्होंने सोचा मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मुझे भगवान पर ध्यान करना चाहिए। तो वृत्रासुर पूर्ण समाधि में चले गए, उसी समय उन्होंने अपना देह त्याग दिया और वो पूर्ण समाधि में चले गए। और जब इंद्र फाड़ कर बाहर आए, और क्यों वो कहते तीन एक वर्ष लगा उनके काटने के लिए, क्योंकि वो समाधि में जाकर उनका जो शरीर था वो इतना कठोर हो गया था कि फिर काटने के लिए उसको एक वर्ष लगा। लेकिन जिसको उन्होंने काटा वो मृत शरीर था, वृत्रासुर को इंद्र ने मारा नहीं, वृत्रासुर ने स्वयं अपने देह को छोड़ दिया, ये जान सोचते हुए कि मैंने इंद्र को मार दिया, युद्ध समाप्त, अभी मुझे भगवान का स्मरण करना है। तो ऐसे भगवान की पूर्ण चेतना में भगवान का स्मरण करते हुए इंद्र को ये बताते हुए कि इंद्र तुम जो यहाँ पर हो, बहुत सुंदर सुंदर बीच में बातें बताई थी कि भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान उनको ऐश्वर्य नहीं देते हैं, इंद्र तीनों लोकों का ऐश्वर्य नहीं देते हैं। अर्थात वो बता रहे थे कि तुम्हें ये जो तीनों लोकों का ऐश्वर्य दिया है भगवान ने, दरअसल उनकी कृपा नहीं है, उनकी सच्ची कृपा मेरे ऊपर है, उन्होंने मुझे स्मरण दिया। तो इसलिए जान लीजिए ऐश्वर्य भगवान की सच्ची कृपा नहीं, स्मरण भगवान की सच्ची कृपा है। अगर भगवान हमें अपनी स्थिति, जैसे श्लोक में वो कह रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, अहम हरेर तप पादय कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। तो कह रहे हैं कि अब बस आपके दास अनुदास में पुनः मैं अपनी स्थिति में स्थित हो जाऊं, अर्थात मैं हूं दासों का दास, भूल चुका था, अब भक्ति करके फिर से आपके चरण कमलों का आश्रय लूंगा। तो ऐसी चेतना में पूर्ण रूप से भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान से प्रार्थनाएं करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए वृत्रासुर ने अपने देह को त्यागा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।